अध्याय पांच। तीसरे दिन एस्तेर राजसी वस्त्र पहने राजमहल के भीतरी प्रांगण में उपस्थित हुई। राजा दर्शन कक्ष में महल के प्रवेश द्वार के सामने अपने सिंहासन पर विराजमान था। जब उसने रानी एस्तेर को खड़ा देखा, वो उस पर प्रसन्न हुआ और अपने हाथ का स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। एस्तेर ने निकट आकर उसके राजदंड का सिरा स्पर्श किया। एस्तेर ने सबों के अधिपति और रक्षक ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपने राजसी वस्त्र पहन लिए और दो दासियों को अपने साथ लिया। वो सुकुमारी की तरह एक पर हल्का सा भार देकर आगे बढ़ी, दूसरी अपनी स्वामिनी के वस्त्र का पुछल्ला संभालते हुए उसके पीछे पीछे चलती थी। उसका मुख गुलाबी रंग से प्रदीप्त था और उसकी आंखें मानो उल्लास से चमकती थीं, किंतु उसका उदास मन मृत्यु के डर से कांपता था। वो क्रमशः सभी द्वार पार कर भीतरी दर्शन कक्ष में राजा के सामने उपस्थित हुई, जहां वो स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित राजसी वस्त्र पहने अपने सिंहासन पर विराजमान था। उसकी आकृति विस्मयकारी थी। उसने आंख उठाकर उसे देखा, उसका क्रोध मदांध सांड की तरह भड़क उठा और उसे पहचाने बिना उसका विनाश करने के विचार से बोल उठा, किसने बिना बुलाए दर्शन कक्ष में प्रवेश करने का साहस किया? रानी का रंग उड़ गया और वो बेहोश होकर अपने सामने की दासी के सिर पर झुक गई। यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। वो घबरा कर अपने सिंहासन से तुरंत उठा। उसने एस्तेर को अपनी बाहों में संभाला और जब तक वो होश में न आई, उसे शांतिपूर्ण शब्दों से इस प्रकार आश्वासन देता रहा, रानी एस्तेर, मेरी बहन और रानी, क्या बात है, तुम्हारा वध नहीं होगा। हमारा ये कानून तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अन्य सब लोगों के लिए है, आओ। फिर उसने सोने का राजदंड उठाकर उसकी गर्दन पर रखा और उसका आलिंगन कर उससे कहा, मेरे साथ बात करो। तब उसने उससे कहा, स्वामी, आप मुझे देवदूत सदृश लगे। आपकी महिमा देखकर मेरा मन भय से घबरा उठा। स्वामी, आप तो विस्मयकारी हैं, परंतु आपका मुखमंडल कैसा अनुग्रहपूर्ण है। ऐसा कह वो फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। इससे राजा अपने सब अनुचरों के साथ व्याकुल हो उठा। राजा ने उससे पूछा, रानी एस्तेर, क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वो तुम्हें दिया जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, यदि राजा उचित समझे तो आप और हामान दोनों आज मेरे उस भोज में सम्मिलित हों जो मैं राजा को दे रही हूं। राजा ने कहा, हामान को जल्दी बुलाओ जिससे एस्तेर का मन रखा जाए। राजा और हामान एस्तेर द्वारा दिए हुए भोज में सम्मिलित हुए। राजा ने अंगूरी पीने के बाद एस्तेर से कहा, बोलो तुम क्या चाहती हो, वो तुमको दिया जाएगा। तुम्हारा क्या निवेदन है? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वो तुमको मिलेगा। इस पर एस्तेर बोली, मेरा निवेदन और प्रार्थना ये है, यदि मुझे राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त है और राजा मेरा निवेदन स्वीकार करें और मेरी प्रार्थना पूरी करें, तो राजा और हामान कल भी उस भोज में सम्मिलित हों जो मैं उन्हें दूंगी। मैं कल राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगी। मोर्दकै के प्रति हामान का द्वेष भाव। हामान उस दिन आनंदित और प्रसन्न चित्त वहां से चला गया। उसने मोर्दकै को राजा के द्वार पर बैठा देखा, किंतु मोर्दकै उसे देखकर खड़ा नहीं हुआ और उसकी कोई परवाह नहीं की। इस पर हामान को बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने अपना भाव प्रकट नहीं होने दिया। घर पहुंचने पर उसने अपने मित्रों और अपनी पत्नी जेरेश को बुलाया और उनके सामने अपने वैभव का वर्णन किया, अपने बहुसंख्यक पुत्रों की चर्चा की और ये बताया कि राजा ने उसे अन्य प्रशासकों और अनुचरों की अपेक्षा कितनी अधिक महिमा प्रदान की। हामान ने यह भी कहा, रानी एस्तेर ने अपने भोज में राजा के सिवा केवल मुझे बुलाया और मैं कल भी उनके यहां राजा के साथ भोजन करूंगा, परंतु जब मैं उस यहूदी मोर्दकै को राजा के द्वार पर बैठा देखता हूं तो ये सब मुझे फीका लगने लगता है। इस पर उसकी पत्नी जेरेश और उसके अन्य मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दें और प्रातः राजा से कहें कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए। इसके बाद राजा के साथ सहर्ष भोजन करने चले जाएं। ये विचार हामान को अच्छा लगा और उसने फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दिया।